नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्ज के बोझ से बचने के लिए राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की दी सलाह। भाजपा का आरोप, झूठे वादों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल रही प्रदेश सरकार। और प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 कल से होगा लागू। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना रहेगा उद्देश्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। शिमला में आज मंत्रिमंडल की बैठक और वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
16वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटा अनुदान यानी RDG बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति, प्रभावों और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त विभाग द्वारा आज शिमला में एक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त करना सरकार का ही नहीं बल्कि राज्य की जनता के अधिकारों का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यदि एक बार RDG का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा।
ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई, हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार। इस समय अधिकार की लड़ाई है, प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया अगले सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक फैसले उठते हैं, राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जोन स्टेट्स का बजट में 15-20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइट होती है, जैसे भी बताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार अदालत का रुख करेगी। उन्होंने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी करने की सलाह दी है।
आज RDG का मसला किसी एक सरकार का नहीं है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। RDG अधिकार है, जो 1952 से आपको RDG के रूप में पहले स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी। RDG जब हम 70 आए तो उसमें RDG मिली है, तो ये अधिकार है। अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी RDG की बात ही नहीं होगी। इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए RDG की जरूरत थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग की प्रस्तुति के दौरान विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका इसमें शामिल न होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
दूसरी ओर राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन न अपनाने से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। शिमला में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट कम करने पर केंद्र सरकार का फोकस है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
शिमला में केंद्रीय बजट पर आधारित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन न होने के चलते 12वें वित्त आयोग की ओर से दी गई RDG अगले वित्त आयोगों की ओर से भी अस्थायी रूप से जारी रखी गई थी। उन्होंने कहा कि ऋण के बोझ से बचने के लिए सभी राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की जरूरत है।
हिमाचल प्रदेश की स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उस पर ब्याज, जो कर्ज लिया गया उसमें से जो कर्ज लिया गया उस पे ब्याज, कर्ज की किश्त, सरकार के एम्प्लॉयज की तनख्वाह और उनका मेडिकल बिल, इन चार चीज को पे करने में 76% पैसा चला जाए। जिस राज्य में अगर 76% पैसा इस पर चला जाएगा वो राज्य डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर कैसे। और उसके अलावा राज्य की पॉपुलर स्कीम, चुनाव जीतने के लेकर के बनाई गई स्कीम, मैं एक स्कीम या किसी राज्य की चर्चा नहीं करूंगा, सभी राज्यों ने इस तरह के काम किया, उसको लेकर के जो दबाव बढ़ता है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय। हिमाचल प्रदेश में भी जो है इट हैज क्रॉस्ड 40%, इट हैज अराइज अप टू 42%, व्हिच इज रियली अ स्टेट ऑफ कॉशन, जो है एक चिंता का विषय है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सशक्त व विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सभी वर्गों के सतत विकास का बजट है, जिसमें नागरिकों के क्षमता विकास को केंद्र सरकार ने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य और सतत विकास का बजट पेश किया है, जिसमें देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स, इन सबके ऊपर भी थ्रस्ट इस बजट के माध्यम से दिया गया है। इस सब के माध्यम से हम एक तरफ मेक इन इंडिया के शिफ्ट को और अधिक मजबूती प्रदान करें और दूसरी तरफ भारत को विकसित बनाने के लिए हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायंस को प्राप्त, क्योंकि हम जानते हैं कि नए ग्लोबल ऑर्डर, जिस तरह का ग्लोबल टर्बुलेंस है और इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता ये दोनों देश की सुरक्षा के मंत्र बन गए, इसलिए भारत आने वाले समय में सशक्त भी रहे और सुरक्षित भी रहे, इसके लिए हम सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस, इन दोनों पर फोकस करके काम करेंगे। इस मंत्र को और अधिक सिद्ध करने की दिशा में इस बजट के माध्यम से बात की गई।
इस बीच केंद्रीय मंत्री ने शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में भी शिरकत की। केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर सबसे अधिक केंद्रित है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। इस बुलेटिन के शेष समाचारों में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार झूठे वादों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल साबित हुई है। धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी गारंटियां पूरा करने के बजाय सरकार अब जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला है। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सब कुछ बंद करने और बदलने की जिद ने आज प्रदेश को दयनीय मोड़ पर खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करने का आह्वान किया। इस बीच देहरा में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अभ्यास वर्ग में जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां कर्मचारी और प्रदेश विरोधी रही हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के विराट दृष्टिकोण का जीता जागता प्रमाण बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केंद्रीय बजट के सार्थक और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे, जिससे आम लोगों का जीवन और बेहतर होगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारत अपने विकसित और आत्मनिर्भर के संकल्प को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होगा। प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 कल से लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है। इस कानून के अंतर्गत अब नकल, प्रश्न पत्र लीक, जालसाजी और परीक्षा संबंधी संगठित अपराधों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अधिनियम के अनुसार भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या नकल में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और उनके कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा जिले के देहरा में आज निर्माणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों को उत्तम शैक्षणिक अनुभव व विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश को वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। चंडीगढ़ में कल शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के विकास सहित नई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार सभी वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा इन दिनों पुराने बिजली मीटरों को नए स्मार्ट मीटरों में बदला जा रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कल 9 फरवरी से 23 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के पहले दिन कल शिमला में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्ज के बोझ से बचने के लिए राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने की दी सलाह। भाजपा का आरोप, झूठे वादों और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पूरी तरह विफल रही प्रदेश सरकार और प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 कल से होगा लागू। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना रहेगा उद्देश्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।